आयु डॉक्टर मानसी से मिलने के बाद आरव से मिली। वो जानती थी कि कुछ ही महीनों में उसकी डिलीवरी हो जाएगी और इसी के साथ उसकी जान भी जा सकती है। आरव से दूर होने का ख्याल की आयु को तकलीफ दे रहा था और ना चाहते हुए भी वो आरव के सामने रोने लगी। आरव के पूछने पर उसने प्रेगनेंसी मूड स्विंग्स होने का बहाना बनाया और उसके साथ टाइम स्पेंड करने को कहा। आरव आयु की बात मान गया था। आयु अपने केबिन में कुछ सामान लाने गई थी जबकि उसके पीछे से आरव मानसी से मिलने गया। वो जानता था आयु मानसी से मिलकर आ रही है और उससे ज़रूर उसे कुछ ऐसी बात पता चली है जिसकी वजह से आयु का मूड इतना ऑफ है। आरव डॉक्टर मानसी के केबिन में पहुंचा। उसे देखते ही मानसी सकपका गई। उसने अपने मन में बड़बड़ाकर कहा, कहीं इसे डाउट तो नहीं हो गया है, इसके सामने तो झूठ बोलना भी मुश्किल है। आरव मानसी के सामने आकर बैठा और कहा, आयु तुमसे मिलने आई थी डॉक्टर? हाँ, मानसी ने जवाब में कहा। वो आयु को थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे, मैंने उसे बोल दिया है कि ये सब नॉर्मल है, आप उसे इतना बाहर मत निकलने दे। आरव मानसी के चेहरे को गौर से देख रहा था, फिर उसने भौहें उठाकर कहा, सच बोल रही हो ना, अभी कुछ देर पहले वो बहुत रो रही थी। मानसी ने जल्दी से कहा, ये नॉर्मल है मिस्टर खुराना, मूड स्विंग्स उसे पहले भी होते थे, लेकिन आपसे छुपाती थी तो आपको पता नहीं चलता होगा। पहले रोना आया भी होगा तो बाथरूम में जाकर रोई होगी। इस टाइम हार्मोनल चेंजेस की वजह से औरतें ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं। आपकी एक छोटी सी बात उन्हें डीपली हर्ट कर सकती है, या कभी एक छोटी सी बात पर खुश हो जाती हैं। कभी कभी गुस्सा भी आ सकता है, इरिटेशन फील होती है और बाकी सब। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा, आरव ने सामान्य तरीके से जवाब दिया और केबिन से बाहर चला गया। आरव के जाते ही मानसी ने राहत की सांस ली। उसने धीरे से कहा, ये लड़की अपने साथ साथ मुझे भी मुसीबत में डाल रही है। मिस्टर खुराना काफ़ी स्ट्रिक्ट है, आयु के लिए झूठ बोलना मुश्किल होता होगा, मिस्टर खुराना पकड़ लेते होंगे। आरव मानसी के केबिन से बाहर निकला और आयु के पास पहुंचा। वो अपने केबिन में थी और अपना सामान कलेक्ट कर रही थी। आरव आयु के पास आकर उसकी हेल्प करने लगा। उसने कुछ फ़ोटो फ्रेम्स भी थे, आरव उन्हें गौर से देखा था। ज़्यादातर फ़ोटोज़ आयु और अनुष्का की थी, तो एक में आरव और आयु साथ थे। आरव ने आयु की तरफ देखकर पूछा, आज भी अनु को मिस करती हो? आयु ने हाँ में पलकें झपकाई और धीरे से कहा, अब उतना नहीं करती, अब तुम हो मेरे पास, मेरा ख्याल रखने के लिए, उसकी तरह हर बात पर मुझे डांटने के लिए। आयु कुछ पल रुकी और फिर आगे से कहा, आरव तुम तो सब पता लगा लेते हो, पता चला कि अनु को उस रात टेरेस से किसने धक्का दिया था? आरव ने बिना कुछ कहे ना में सिर हिला दिया। आयु का ध्यान अनु की तरफ जा रहा था। आरव ने उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे अपने करीब खींचा और कहा, अपने माइंड को डिस्टर्ब मत करो, तुम्हारे स्ट्रेस का असर बेबीज पर पड़ेगा। आयु से आरव से अलग हुई और मुस्कुराकर बोली, फिर तो मैं एनी टाइम खुश रहूंगी, अब से हम दोनों फाइट भी नहीं करेंगे, मैं तुम पर गुस्सा करूं तो तुम प्यार से समझा देना, और तुम्हें गुस्सा आए तो मुझ पर मत निकालना। आरव ने उसकी बात पर हामी भरी। आयु का सारा सामान पैक हो गया था, तो आरव ने उसके बॉक्स को अपने हाथ में लिया और आयु को अपने साथ आने का इशारा किया। आरव और आयु केबिन से बाहर निकले ही थे कि उन्हें अयान मिल गया। आरव के हाथ में बॉक्स देखकर वो समझ गया था कि आरव आयु के साथ घर जा रहा था। मॉम उठ गई थीं तो मुझे लगा आप उनसे मिलना चाहते होंगे, वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही हैं, यही टाइम है उन्हें उनकी बीमारी के बारे में बताने का, क्या प्लीज़ आप मेरे साथ चल सकते हैं? अयान ने काफ़ी पुलाई थी पूछा। उन्हें हॉस्पिटल आए हुए काफ़ी टाइम हो गया था, ऊपर से आयु की प्रेगनेंसी की वजह से वो भी लो फील कर रही थी। आरव मना करता उससे पहले आयु ने कहा, हाँ क्यों नहीं, आरव तुम्हारे साथ चला जाएगा। आरव ने आयु की तरफ देखकर नामे सिर हिलाते हुए कहा, नहीं आयु, हमें यहाँ और टाइम लग जाएगा, पहले ही यहाँ आए हुए काफ़ी देर हो गई है और तुम इतनी देर से घूम ही रही हो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, उसके बाद वापस आ जाऊँगा, या फिर कल सुबह उन्हें इस बारे में बता देंगे। अयान ने आरव की बात पर सहमति जताते हुए कहा, भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, तुम्हें भूख भी लगी होगी, मेडिसिन वगैरह का भी टाइम हो गया होगा, मेडिसिन मैं अपने साथ लेकर आई हूँ, आयु ने जवाब दिया। वो भी यही चाहती थी कि आरव अयान के साथ छवि से मिले, इसलिए उसने बीच का रास्ता निकालते हुए कहा, अच्छा ऐसा करो, तुम दोनों मिसेस सिंघानिया से बात कर लो, उनकी बीमारी के बारे में बता दो और बाकी सब जो भी तुम्हें बात करनी हो, मैं तब तक पास के मॉल में चली जाती हूँ, मुझे थोड़ी शॉपिंग भी करनी थी और कुछ खा भी लूँगी। लेकिन तुम अकेले कैसे जाओगी, कहीं बीच में तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो? आरव ने जवाब दिया। उसने आयु को अकेले भेजने से साफ मना कर दिया था, थोड़ी देर पहले खुद उसने अपनी आंखों से देखा था आयु की तबीयत खराब होते हुए। आयु ने आरव का हाथ सहलाते हुए कहा, डोंट वरी, मैं मैनेज कर लूंगी और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुम्हारी जरूरत महसूस हुई तो तुम्हें कॉल कर दूंगी। आयु के समझाने पर आरव मान गया था। आरव अयान के साथ छवि के रूम की तरफ जा रहा था तो वहीं आयु हॉस्पिटल से निकलकर पास ही के मॉल में चली गई। काफी दिनों बाद वो इस तरह अकेले शॉपिंग कर रही थी तो आयु को काफी अच्छा महसूस हो रहा था। अपनी जरूरत का काफी सारा सामान खरीदा और फिर मॉल के ईटिंग एरिया में आ गई। आयु ने अपने लिए खाना ऑर्डर किया और वो वहां बैठकर अपना मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी। आयु ने सबसे पहले आरफ को मैसेज किया कि वो बिल्कुल ठीक है और उसकी तबीयत भी खराब नहीं हुई। आयु हब में ही लगी थी तभी उससे दो टेबल दूर कोई उसकी तरफ अजीब निगाहों से देख रहा था। वो फैज खान था जो किसी मीटिंग के सिलसिले में मुंबई आया हुआ था। फैज अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। फैज ने आयु से ना मिलने का डिसाइड किया था लेकिन अचानक उसे अपने सामने देखकर वो खुद को रोक भी नहीं पा रहा था। छवि सिंघानिया को होश आ गया था इसलिए आरफ को उसके पास छोड़कर आयु पास ही के मॉल में आई हुई थी। उसने पहले अपने लिए शॉपिंग की और फिर खाना खाने के लिए मॉल के फूड एरिया में आ गई। आयु ने अपने लिए खाना ऑर्डर किया और अपने मोबाइल में लगी हुई थी तभी फैज ने उसे देख लिया। फैज यहाँ किसी मीटिंग के सिलसिले में आया हुआ था। फैज पर नजर पड़ते ही फैज ने धीरे से कहा, बहुत सोचा था कि आपसे दूर रहेंगे स्पेशली आपके प्रेगनेंसी टाइम में, लेकिन यहाँ हमारी कोई गलती नहीं है, आप खुद हम तक चलकर आई हैं। अब आपको इस तरह इग्नोर करके हम आपकी इंसल्ट तो नहीं कर सकते ना डॉक्टर। आयु को देखने के बाद फैज ने अपने क्लाइंट से कहा, हम आपसे बाद में मिलते हैं। लेकिन सर टॉपिक बहुत, फैज के क्लाइंट ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन फैज ने जब उसे सर्द निगाहों से देखा तो उसने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया और वहां रखी फाइल समेटने लगा। उसके जाने के बाद फैज धीमे कदमों से चलकर आयु की टेबल पर गया और उसके सामने आकर बैठ गया। आयु को ये तो एहसास हो गया था कि कोई उसके सामने आकर बैठा है लेकिन उसने ऊपर की तरफ नहीं देखा था। आयु ने अपना मोबाइल साइड में रखते हुए कहा, एक्सक्यूज बोलते हुए आयु ने ऊपर देखा तो उसके शब्द उसके गले में ही अटक गए। फैज को अपने सामने देखकर आयु को घबराहट होने लगी। डर से आयु के माथे पर पसीने की बूंदें थीं। फैज उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और अपनी रुमाल निकालकर उसके माथे पर से पसीने की बूंदें साफ करते हुए बोला, आपको हमसे इस तरह डरने की जरूरत नहीं है, हम तो बस आपसे मिलने के लिए आए थे।
आयु जानती थी फैज कितना खतरनाक है। उसने आरव का एक्सीडेंट तक करवा दिया था, ऊपर से वो वहां पर अकेली थी और प्रेग्नेंट भी। ऐसे में आयु फैज से लड़ नहीं सकती थी। आयु ने अपनी घबराहट पर काबू किया और रिक्वेस्टिंग वे में कहा, देखो मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन हमने आपको पकड़ा ही कहा है डॉक्टर, जो आपको जाने देंगे। इस तरह हमसे डरिए तो मत, बस हम तो आपसे बात करने आए थे। हमें लगा हमें ठीक देखकर आप हमारे हालचाल पूछेंगी, लेकिन आप तो सीधे ही जाने का सोच रही हैं, फैज ने काफी रिलैक्सिंग वे में कहा। वहां आयु की कॉफी पड़ी हुई थी जिसमें से उसने एक दो सिप ही लिए थे। फैज उसको उठाकर पीने लगा। उसके चेहरे के भाव काफी रिलैक्सिंग थे और वो आयु को घूरते हुए बोला, ये कुछ ज्यादा ही टेस्टी नहीं है, हमने हमारे लिए भी ऑर्डर की थी लेकिन इसकी बात कुछ अलग ही है। कॉफी के साथ साथ आपके होठों का स्वाद इसके साथ जुड़ गया है। फैज की बात सुनकर आयु जल्दी से अपनी चेयर से खड़ी हुई और अपना बैग उठाकर हड़बड़ाते हुए बोली, मुझे देर हो रही है। आयु दूसरी तरफ पलटी ही थी कि फैज ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ घुमाकर कहा, बैठ जाइए, हमें आपसे बात करनी है, तो आप इस तरह हमें इग्नोर नहीं कर सकती। बोलते हुए उसकी नज़र आयु के पेट पर गई। वो उसे तिरछी निगाहों से घूर रहा था। आयु के पेट को देखते हुए फैज ने सर्द आवाज में कहा, लगता है ट्विंस है, तभी 2 महीने में ही आपका बम ज्यादा आगे निकल आया है। आयु ने डरकर अपने पेट पर हाथ रख लिया। उसे अपने बच्चों के लिए डर लग रहा था। फैज अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने आयु को आराम से चेयर पर बिठाया। फिर उसने आयु को पानी देते हुए कहा, ऐसी हालत में ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। कैसे हस्बैंड हैं आपके जो इस हालत में आपको अकेले छोड़कर अपना काम कर रहे हैं। पानी पीजिए और खुद को रिलैक्स कीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे, करना होता तो उस वक्त कर चुके होते जब आपके प्रेग्नेंट होने की बात पता चली थी। फैज की बातें आयु को डरा रही थी। उसने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? आपने हमें तुम कहा, आपकी जगह कोई और होता तो हम उनकी जान ले लेते, लेकिन आप जब हमें तुम बोलती हैं तो अपनापन महसूस होता है, तो आप कह सकती हैं। फैज उस वक्त किसी साइको की तरह बात कर रहा था। उसने आगे कहा, हमें आपके बारे में सब पता होता है, तो इस तरह हैरानी से मत देखिए हमें। जब सब पता है तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आयु ने सिर हिलाकर कहा। फैज उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, कहा ना आपसे मिलने आए थे, अचानक आपको यहाँ देखा तो आ गए। अच्छा आप बताइए कि आप कैसी हैं, आपकी प्रेगनेंसी में ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है ना? आयु को समझ नहीं आ रहा था कि फैज उससे इतना नॉर्मली बात क्यों कर रहा था। वो तो उससे ऐसे बात कर रहा था जैसे उसका कोई कॉलेज फ्रेंड हो। मैं ठीक हूँ, आयु ने जवाब में इतना ही कहा। फैज आगे कुछ कहता कि तभी वेटर खाना लेकर आ चुका था। फैज ने एक नज़र खाने की तरफ देखा तो उसमें ज्यादातर जंक फूड ही था। उसने वेटर की तरफ सर्द निगाहों से देखा और उसी लहजे में कहा, अभी के अभी ये खाना यहाँ से लेकर जाओ, ये इनकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, हम इसके लिए पेमेंट कर देंगे, लेकिन आप इनके लिए कुछ हेल्दी फूड लेकर आइए, दिख नहीं रहा है ये प्रेग्नेंट है। सॉरी सर, आपकी वाइफ ने जो मंगवाया था मैं वही लेकर आया हूँ, वेटर ने जवाब दिया। उसे गलतफहमी हो गई थी, उसे लगा आयु फैज की वाइफ है। आयु तुरंत उसे सही करते हुए बोली, ये मेरे हस्बैंड नहीं है और मैंने जो खाना मंगाया है मैं वही खाऊंगी, इसे हाथ भी मत लगाना। फैज ने वेटर को वहां से जाने का इशारा किया। उसके जाते ही फैज आयु की तरफ देखकर बोला, बहुत जिद्दी है आप, बिल्कुल किसी छोटे बच्चों की तरह जिद करती हैं। ऐसे ही जिद करेंगी तो आप हमारी मुश्किलें बढ़ा देंगी। हमें डिसेंट लड़कियां पसंद है। फैज की बातें सुनकर आयु को गुस्सा आ रहा था। ऊपर से उसके प्रेगनेंसी मूड स्विंग्स की कुछ ज्यादा ही थे। आयु गुस्से में उस पर चिल्लाकर बोली, हाँ तो जाकर अपने लिए कोई डिसेंट लड़की ढूंढो ना, क्यों मेरे पास आकर मुझे डरा रहे हो? तुम चले जाओ यहाँ से, वरना मैं चली जाती हूँ। उफ, ये आपका गुस्सा, ये तो दिन ब दिन बहुत कातिलाना होता जा रहा है। ठीक है, हम ही चले जाते हैं, बाकी यही कहेंगे कि अपना ख्याल रखिएगा, फैज ने ईविल स्माइल करते हुए कहा और वहां से चला गया। आयु को उसके बर्ताव पर बहुत हैरानी हो रही थी, अचानक उसका आना और इतनी नॉर्मली बात करना। फिर उसने इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपना खाना खत्म करने में लग गई। आरव अयान के साथ छवि के रूम में पहुंचा। इस वक्त रूम में अयान, छवि और आरव, ये तीन ही थे। आरव को देखते ही छवि ने उसे तिरछी निगाहों से देखा। छवि की नजरों को पढ़ते हुए आरव ने अयान से कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, अब ये नॉर्मल बिहेव कर रही है, तभी मुझे इस तरह से देख रही है। इन्हें मेरा यहाँ होना अच्छा नहीं लग रहा, तो तुम ही इन्हें सब बता दो, मैं बाहर चला जाता हूँ। आरव नाराज होकर वहां से जाने लगा, तभी छवि ने पीछे से कहा, वापस आ जाओ बेबी बॉय, बात तो करनी ही होगी, चाहे दोनों एक दूसरे से कितनी ही नफरत क्यों ना करें। छवि की बात सुनकर आरव के फेस पर सार्कास्टिक स्माइल थी और वो उसकी तरफ पलट गया। भले ही वो छवि से कितनी भी नफरत क्यों ना करता हो, लेकिन दो ही दिनों में उसके प्यार को देखकर वो पक गया था और आज उसके फिर से रूडली बात करने पर आरव को दिल ही दिल में काफी सुकून महसूस हो रहा था।